जय रूपी जनवल्लभा जय गिरिवराधारी रूपी जनवल्लभा जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवराधारी जय यशोदानन्दना जय व्रजनरञ्जना यशोदानन्दना जय यशोदानन्दना जय व्रजनरञ्जना यशोदानन्दना जय यमुना तीरवनचारी जय कुञ्जविहारी जय यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारे राधा कुंज बिहारे राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरनाम संकीर्तन की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की गंगा माय यमुना माय की मायापूर्णवति धाम की శ్రీ క్షేత్ర జగన్నాథపురి ధామకి కలిక పావన్ హరినామ సంకీర్తనకి మితాయి గౌర ప్రేమానంది ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు అండ్ గౌరంగ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ హరే కృష్ణ చర్చా కర్ రహే శ్రీమద్ భాగవత్ స్కంద 4 अध्याय 28 और श्लोक क्रमांक 55 कृपया मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए
स्वत्वं विहाय मां बंधो गतो ग्राम्यमतिमहिं विचरन पदमौत्राक्षी कयाचित् निर्मितं स्त्रिया स्वत्वं विहाय मां बंधो गतो ग्राम्यं मतिर्महिं विचरन् पद्मदाक्षी कयाचित् निर्मितं स्त्रिया सत्वं विहाय मां बंधो गतो ग्राम्यं मतिर्महिं विचरन् पद्मद्राक्षी कयाचित् निर्मितं स्त्रिया
Yeah. आता है। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार से है, स वह हंस, त्वम तुम्ही, विहाय छोड़कर, माम मुझको, बंधो हे मित्र, गत चला गया, ग्राम्य भौतिक, मति चेतना, महिम पृथ्वी पर, विचरण घूमते हुए, पदम पद, अद्राक्षी तुमने देखा, कयाचित किसी के द्वारा, निर्मितम निर्मित, स्त्रिया स्त्री द्वारा। अनुवाद, हे मित्र तुम मेरे वही मित्र हो जब से तुमने मुझे छोड़ा है। तुम अधिकाधिक भौतिकवादी हो गए हो और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। तात्पर्य, जब जीव नीचे गिरता है तो वह भौतिक जगत में आता है जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हुई है। यहाँ पर इस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत उन तत्वों से बना है जो महत्त्व से प्राप्त हुए। यह भौतिक जगत इस प्रकार बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर बद्ध जीव का तथा कथित निवास स्थान बन जाता है। इस भौतिक जगत में जीव विभिन्न घर या कि विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरता है। कभी वह उच्च लोकों का भ्रमण करता है तो कभी निम्न लोकों का, कभी वह उच्च योनि में घूमता है तो कभी निम्न योनि में। इस प्रकार वह अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर विचरता रहा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। जीव अनेक योनियों में घूमता रहता है किंतु वह भाग्यशाली होता है जब उसकी पुनः अपने मित्र से या तो साक्षात या उसके प्रतिनिधि रूप में भेंट होती है। वास्तव में श्री कृष्ण ही समस्त जीवों को भगवान के धाम लौटने का उपदेश देते हैं। कभी कभी वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं जो उनके संदेश को जीवों तक पहुंचाकर उन्हें भगवान के धाम लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। दुर्भाग्यवश जीव भौतिक सुख में इतना लिप्त है कि वह न तो कृष्ण न उनके प्रतिनिधि के आदेशों को गंभीरता से लेता है। इस भौतिक प्रवृत्ति को इस श्लोक में ग्राम्य मति इंद्रतृप्ति कहा गया है। महिम शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत के अंदर। इस भौतिक जगत में सारे जीव कामोन्मुख हैं, फलतः वे अनेक शरीरों में बंध जाते हैं और संसार के कष्टों को सहते रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामय्यं ददाति स्वपदाङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग नामनेश्वरी
वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
तो सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि हालांकि कुछ साक्षात्कार नहीं है लेकिन जो सुना है वरिष्ठ भक्तों से तो वो यहाँ पे दोहराने का प्रयास करूँगा। स्पेशली श्रीमान राधेश्याम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आशीर्वाद दें कि मैं थोड़ा बहुत बोल पाऊँ जिससे मेरा शुद्धिकरण हो और आप सब की प्रसन्नता के लिए। तो ये आज का श्रीमद् भागवतम कक्षा जो है स्कंद 4 से अध्याय 28 शीर्षक जो है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और श्लोक क्रमांक है 55। तो अब तक जो 52, 53, 54 ये तीन श्लोकों में जो परमात्मा है वे ब्राह्मण के रूप में आते हैं और जो वैदर्भी भी हैं जो पुरंजन की पत्नी तो उन्हें वे मार्गदर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं उन श्लोकों के तात्पर्य में जब व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाता है तभी परमात्मा के साथ वो वार्तालाप कर सकता है। तो उसके लिए व्यक्ति को शुद्ध और प्रामाणिक होना बहुत महत्वपूर्ण है तभी जाकर ये मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हालांकि भगवान जो है हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में लेकिन जब तक हम शुद्ध और प्रामाणिक नहीं होते हैं तब तक वे सामने आकर मतलब शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के रूप में हमें मिलते नहीं हैं। जब हम शुद्ध हो जाएंगे या प्रामाणिक हो जाते हैं तब वे शिक्षा या दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे आज के श्लोक में बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु जो अगर गुरु को प्रसन्न करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। हम देखते हैं कि जो परमात्मा है को हम हमेशा साथ में रखते हैं या फिर वो हमारे साथ रहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं उन्हें कि वे हमारे साथ हैं। तो पिछले श्लोक में बताया कैसे कि वे दोनों एक ही जगह पर रहते हैं आत्मा और परमात्मा लेकिन वे जो उनका असली जगह है उससे बहुत दूर आ चुके हैं। तो अब यहाँ तक हम रिविजन लिए या फिर अब तक ये ऐसा हुआ है और अभी आगे देखते हैं कि इस श्लोक में क्या प्रभुपाद बताते हैं। तो इसमें हम कुछ चीज़ें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जीव जो है नीचे क्यों आता है, दूसरा है कि मित्र तो ये फ्रेंड क्या है और तीसरा प्रकृति। तो ये तीन पॉइंट्स हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम देखेंगे कि जीव जो है वे नीचे आते हैं मतलब भगवान को छोड़ के नीचे आते हैं तो इसके दो कारण हैं। एक कारण है कि भगवान जो है उनकी इच्छा से जीव को इस भौतिक जगत में भेजते हैं उनकी सेवा के लिए। जैसे हमने चर्चा मतलब पढ़ रहे थे कि भगवान जो है अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं मतलब उनकी इच्छा हो या ना हो लेकिन भगवान जब सेवा देते हैं तो वे यहाँ पर आते हैं भौतिक जगत में। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण जो है जीवात्मा अपनी इच्छा से आते हैं। तो दोनों जगह पे इच्छा आती है, एक भगवान की इच्छा और दूसरी अपनी इच्छा। अगर अपनी इच्छा से आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दुख भोगेंगे लेकिन अगर भगवान की इच्छा से आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आनंद प्राप्त करेंगे। तो फ्री विल जो है हम देखते हैं कि किन के फ्री विल से हमें रहना है। अगर भगवान के फ्री विल से रहेंगे तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे भगवत धाम में। अगर हम हमारे फ्री विल से रहेंगे तो हम कभी चिंता से फ्री नहीं होंगे या दुख से फ्री नहीं होंगे लेकिन भगवत धाम से फ्री हो जाएंगे। जैसे कुछ दिनों पहले श्रीमान केशव को बता रहे थे कि कैसे सिचुएशन कैसे हो जाता है भगवत धाम में और हम कैसे यहाँ पर आ जाते हैं। तो बता रहे थे कि लंच टाइम जो काना और उनके जो ग्वाल बाल हैं उनका लंच टाइम जो हो रहा था तब सभी ग्वाल बाल जो है अपना टिफिन खोलकर सबसे पहला न्योला जो है वो कृष्ण को अर्पण कर रहे थे लेकिन उनमें से एक, पता नहीं नाम नहीं बोला उन्होंने, एक्स वाई जेड, तो जो अगर बोलता है कि कान्हा मैंने लाया है लेकिन मेरे लिए, आपके लिए नहीं, तो भगवान बोलते हैं कि आपके लिए फिर हम अलग दुनिया बसाएंगे और वो है भौतिक जगत, और उस फिर भगवान हमें यहाँ पर भेज देते हैं। लेकिन जैसे हम देखते हैं कैसे कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वे अपनी इच्छा से नहीं आते हैं, जैसे प्रभुपाद जो हैं, प्रभुपाद या फिर जो बाकी आचार्य हैं या फिर भगवान जिन्हें चुनते हैं वे उनकी इच्छा के लिए आते हैं, और ये जो जीवात्मा है इन्हें वापिस ले जाने के लिए आ जाते हैं। तो इसी अध्याय में एक जगह पर ऐसा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन जो है बड़े गाड़ी में बैठता है, और आगे ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, और उस व्यक्ति को पता है गाड़ी कहाँ जाने वाली है, गाड़ी कौन से कंपनी की है, गाड़ी का एवरेज क्या है, गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, गाड़ी कैसे चलती है, कितने स्पीड से चलती है, सब इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति को पता है। लेकिन जब वो व्यक्ति गाड़ी में बैठता है तो उसके बारे में सोचता नहीं है। तो बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस के बारे में सोचता है कि अभी बिजनेस कैसे बढ़ाए। तो वैसे ही जो शुद्ध भक्त है भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, उन्हें पता है ये भौतिक जगत दुखालय है, इधर तकलीफ होने वाली है, यहाँ पर जन्म लिया है मतलब जरा व्याधि और मृत्यु होने वाला है। लेकिन वो इनके बारे में ना सोचकर वे ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें किस लिए भेजा है, भगवान का मिशन क्या है, उसी के बारे में जो ये महात्मा है, शुद्ध भक्त हैं जो भगवान ने भेजे हुए हैं, वे उनके बारे में सोचते हैं। जैसे हम उदाहरण लेंगे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का उदाहरण लेंगे, हालांकि कितना भी लेट हो रात को 1 बजे 2 बजे, लेकिन उनका फिक्स है कि सुबह वो मंगल आरती में आएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, मतलब उनका उद्देश्य फिक्स है, बाकी तकलीफें जो भी आए लेकिन उनका उद्देश्य फिक्स है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में भी, प्रभुपाद के जीवन में वो अलग अलग कार्य कर रहे थे, हालांकि बाहर से दिख रहा था कि कैसे एकदम गृहस्थ जीवन में बिजी हो गए, लेकिन उनके मन ही मन उनके जो गुरु है उन्होंने जो आदेश दिया था उनके बारे में वो सोच रहे थे, और उन्होंने वो पूरा करके भी दिखाया। हालांकि बहुत सारे तकलीफें हुई हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा न सोचकर वे उनका गोल जो है उसके ऊपर ही फोकस करते थे। और भगवान भी क्या करते हैं, जब भक्त अपने गोल पे फिक्स रहता है तो भगवान भी उन्हें मदद करते हैं, जैसे वो गोल से भटक जाते हैं भगवान भी छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल दिया है तो उसका इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। जैसे नित्य सिद्ध भक्त होते हैं उनको ही भगवान यहाँ पर जो मिशन है फुलफिल करने के लिए भेजते हैं। तो हम भगवान को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वो डिपेंड्स कि वो कौन सी लीलाएं करते हैं। अगर भगवान जो अगर माखन चुराते हैं तो हमें हम उन्हें माखन चोर बोलते हैं। तो उनके हर एक जो एक्टिविटी है लीला है उनके अनुसार हम उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। अगर रण छोड़ते हैं तो उनके रण छोड़ राय बोलते हैं। तो वैसे ही हम अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो कृष्ण है पतितों का उद्धार करते हैं तो उनका नाम गिर जाता है पतित पावन, क्योंकि हम यहाँ पर गिरे हैं। जैसे अभी यहाँ पर जब जीव नीचे गिरता है, नीचे गिरता है मतलब भगवतधाम से यहाँ पर गिर जाते हैं, तो उसको दूसरे भाषा में पतित बोला जाता है। तो ऐसे पतित जीवात्मा को भगवान पावन करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है पतित पावन। तो हम देखेंगे जगन्नाथपुरी जब जाते हैं तो जगन्नाथ मंदिर में सबको अलाउड नहीं है, तो बाहर बोर्ड लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर लोग ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वे सबके भगवान हैं, सबके हृदय के अंदर है, और दोनों को देखिए बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। जिन्होंने लगाया है वो भी भक्त हैं, और जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं वो भी भक्त हैं, लेकिन भगवान तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं। जो अंदर आ सकते हैं उनके लिए भगवान अल्टर में बैठे हैं, जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए भगवान बाहर बैठे हैं पतित पावन रूप, पतित पावन के रूप में। तो देखिए कि भगवान हमेशा जीवात्मा के बारे में सोचते रहते हैं, हालांकि वे उधर अपने लीला में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान जो जीवात्मा उनको छोड़ के गए हैं उनके ऊपर, आगे जाके हम चर्चा करेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं। लेकिन ये जो बद्ध जीवात्मा है जो पतित है उनके लिए यही आशा है कि भगवान जो है हमारे बारे में थोड़ा तो सोचते हैं, हालांकि हम बिना सोचे यहाँ पर आ गए, हमने सोचा नहीं भगवान के बारे में, भगवान क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हम उनको आनंद दे रहे थे लेकिन आनंद देते देते हम ही आनंद लेने लगे और भगवान को छोड़ के आ गए। तो ये भगवान जो है हमारे लिए कौन कौन से अलग अलग रूप में आते हैं। तो जैसे हम अभी देखेंगे कि भगवान मित्र या फ्रेंड बन के आते हैं। तो श्रीमान राधेश्याम पुन एक किताब लिखा है, योर बेस्ट फ्रेंड। तो शुरुआत में हम लोग ये पढ़ते थे जब नए नए थे, तो है ना, हर कोई व्यक्ति जब कॉलेज में आता है तो फ्रेंड को ढूंढता है। तो फ्रेंड के अलग अलग फ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है, लेकिन प्रभुजी ने बताया कि हमारा जो रियल बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है। तो अभी वो हम सबके फ्रेंड बन गए। प्रभुजी ने पहले ऐसे नहीं बोला कि आवर फ्रेंड, अगर आवर फ्रेंड बोलते तो कोई आते नहीं थे, इसलिए प्रभुजी ने लिखा है कि यूर बेस्ट फ्रेंड। तो हम ढूंढ रहे फ्रेंड को, तो हमें वो फ्रेंड मिल गए और प्रभुजी ने आसानी से हमें वो प्राप्त करके दिए हैं। जैसे राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माय की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। तो रियल फ्रेंड मतलब जो हर जगह हर समय हर सिचुएशन में हर पल पल हमारे साथ होता है, और वैसे ओनली एंड वन वो सिर्फ कृष्णा है, और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे जो फ्रेंड होते हैं उनके तीन प्रकार देखेंगे, एक मित्र, दूसरे बंधु, तीसरा सुहृद। तो मित्र जो है वो सुख में साथ देता है लेकिन दुख में भाग जाता है, वो आता ही नहीं है। दूसरा है बंधु, हमारे रिश्तेदार रिलेटिव्स जो होते हैं अभी, और तीसरे जो है सुहृद, जो सदैव हमारे साथ हृदय में सुख दुख में, हम अमीर हो गरीब हो, मतलब किसी दुखी हो, हॉस्पिटल में हो, घर पे हो, कहाँ पर भी हो, वो हमारे साथ रहते हैं। तो जो बीच में हमारे हिज ग्रेस अमरिंद्र पो आए थे तो वो एक उदाहरण दे रहे थे इसके बारे में। तो जैसे हम देखते हैं कि लोग दशहरे के दिन घर साफ करते हैं, और जब घर साफ करते हैं तो पूरा साल का वन टाइम माँ क्लीनिंग हो जाता है, और उस समय कोई दोस्त आता है, उस व्यक्ति का दोस्त आता है, देखता है कि मेरा दोस्त जो है पूरा एकदम माँ क्लीनिंग करने में लग चुका है, जैसे आज माँ क्लीनिंग है, तो वैसे वो आ गए और उनको मदद करने के लिए शुरू हो गए, मदद किया, सब से ट्रेड किया, और वो जो है धन्यवाद बोलता है, जो जिसने हेल्प लिया है उसे कुछ प्रसाद देता है, और वो जो व्यक्ति जिसने दूसरा मित्र है उसने मदद किया है वो जाता है, वापस कभी आता नहीं है। तो ये है बंधु, मतलब जो आएगा मदद करेगा लेकिन उसके बाद जो अनुभव लिया है उसके द्वारा वो कभी आएगा नहीं, तो ये है बंधु। तो दूसरा मित्र ऐसा होता है, वो देखता है कि हमारा मित्र घर साफ कर रहा है, वो भी मदद करता है, लेकिन बाहर जाकर पूरा ढिंढोरा पीटता है, क्या यार मैं उनके घर पे गया था, उसने मुझे लगा दिया काम में, उसने भी तो मैं गया था मिलने के लिए लेकिन काम में लगा दिया, और पूरे मतलब देखो ये ऐसा मित्र होता है, तो ऐसा जो ढिंढोरा पीटता है उसका बदनामी करता है, तो वो हो गए मित्र। मतलब अगर पार्टी है तो वो अच्छा है, अगर उस काम करवाना है तो वो बुरा है, तो ये मित्र है। तीसरा है सुहृद, तो तीसरा मित्र आता है वो उनको मदद करता है और बाहर जाने के बाद किसी से बताता भी नहीं है और नेक्स्ट टाइम आता भी है, तो वो है सुहृद। तो वैसे कृष्ण जो है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति विद्रोह करता है कहीं पर भी हो, अगर जॉब में विद्रोह करता है कोई एम्प्लॉय, तो उसे फायर किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, और वो मालिक ये नहीं सोचता कि इसका आगे क्या होगा, इसका फैमिली का क्या होगा, इसके फैमिली को कैसे मेंटेन करेगा, वो कहाँ जाएगा, वो ये सोचता नहीं अगर वो विद्रोह करता है तो। तो लेकिन अगर हम देखते हैं घर में भी जब कोई बेटा सुनता नहीं है बाप का एक बार दो बार, तो पिता क्या करते हैं उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं कि मैं मेरे प्रॉपर्टी से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसने विद्रोह किया है। और हमने अब ये दो एग्जाम्पल लिए, पहले इसमें भी कोई उनका सोचता नहीं है कि इसका क्या होगा आगे, और दूसरे एग्जाम्पल में देखें कि अपना बाप जिसने जन्म दिया है वो भी सोचता नहीं है कि बेटा कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। तो ये दोनों भी हम देखते हैं, एक तो एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशन है, दूसरा है बाप और बेटे का रिलेशन है, लेकिन जो कृष्ण है हमारे माए बाप हैं वो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि हम विद्रोह करके आए हैं, कृष्ण ने समझाया हमें मत जाओ, थोड़ा सा एक चीज साइड में रखना है जो है इच्छा और द्वेष, ये साइड में रखना है, जो
एंजॉय मेंटेलिटी वो साइड में रखना है तो सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम आनंद से आराम से रह सकते हो। लेकिन हम बोले कि नहीं, कि मुझे भी वो भी थोड़ा टेस्ट करके आना है। तो इसलिए भगवान जो है हमें छोड़ देते हैं, ठीक है फ्री विल है तुम जा सकते हो, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि भगवान ने पूरा भौतिक जगत क्रिएट किया है। किसके लिए? हमारे लिए किया है। उन्होंने सोचा अभी जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसके लिए रहने के लिए जगह होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें, और अकेला रहे थोड़ी रहेगा, उसके साथ और भी चाहिए आनंद प्राप्त करने के लिए, और ऐसी जगह भी चाहिए। मतलब देखिए अगर हम सोचेंगे कि हमने क्या इच्छा की थी, कौन कौन से उठपटांग इच्छा किया थी हम लोगों ने, तो अगर ये भौतिक जगत देखेंगे इतना क्लिष्ट है, ब्रह्मांड है, इतने सारे 84 लक्ष योनि है। तुकाराम महाराज बोलते हैं एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। देखो मनुष्य होता है, मनुष्य इसमें 4 लाख होते हैं, उसमें से हम तो पता नहीं इतने 4 लाख, लेकिन थोड़ा बहुत देखेंगे कोई गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई नाटे होते हैं, कोई हाइटेड होते हैं, कोई अमीर होते हैं, कोई गरीब होते हैं। तो ये सब हमारी इच्छा है, हमारे कर्म के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो सोच सकते हैं कि ये इतने सारे जो जीवात्मा है उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, कोई स्वर्गलोक में रहता है, कोई तपलोक में रहता है, कोई महरलोक में रहता है, कोई नरक में रहता है, तो सब उनकी इच्छा है। अगर ये भारत में देखेंगे काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम रीजन देखते कहीं धूप ज्यादा है, कोई ठंडी ज्यादा है, तो ऐसी इच्छा है हमने की है, इसके कारण हम उस जगह पर जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान ये बोलते हैं ना थकते ना डांटते ना छोड़ के भगवान हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं, इसलिए उनका नाम है दया सिंधु या करुणा सिंधु। तो हर एक योनि में भगवान साथ भी देते हैं, ऐसा नहीं है भगवान ने हमने बोला कि जाओ तुम्हारे सब व्यवस्था की है तुम रह सकते हो, इतना ही नहीं, व्यवस्था करने के बाद वो खुद आते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, किसी ने हमें कुछ मदद मांगा तो हम बोलते हैं हाँ कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, बोले आप कर लो हो गया हमारा, मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन भगवान मैनेजमेंट प्लस खुद आते हैं हेल्प करने के लिए। तो कैसे आते हैं? वो डायनासोर हो या असुर हो या विष्टा का कीड़ा हो, भगवान हमेशा उनके हृदय में रहते हैं। या अमीबा हो तो उनके हृदय में भी आते हैं और ये बताते हैं कि तुझा बा मीच आए। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोलते हैं कि अमीबा मतलब तुझा बा, अमीबा मतलब अमी तुमचा बा। तो ये बताने के लिए भगवान जो है उनके हृदय में भी आते हैं। तो भगवान जो है हमारी इच्छा के अनुसार सब अरेंजमेंट करते हैं। हम देखते हैं जैसे बिल बोर्ड लगता है बाजू में लगा हुआ है तो उधर लिखा है 1 BHK या 2 BHK फ्लैट वट एवर लैक लिखा है, लेकिन उसके ऊपर एक स्टार लगा है तो स्टार के पीछे बहुत गहन अर्थ होता है। तो वैसे ही भगवान ने भी एक स्टार लगा दिया है, भौतिक जगत क्रिएट किया है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक स्टार लगा दिया है, वो है दुखालयम अशाश्वतम। बोलिए सब आपको मिलेगा लेकिन उसका थोड़ा सा दुख है और ये टेम्पररी है, मतलब दोनों टेम्पररी है, सुख भी और दुख भी। तो ये अगर हम समझ गए तो हम वापस जा सकते हैं, तो हमारे घर वापसी हो सकती है। तो ये जीवात्मा जो है यहाँ आने के बाद बहुत पैशन बढ़ाता है, बहुत पैशन बढ़ाता है, लेकिन भगवान देखते कि ये जीवात्मा कितना भी पैशन बढ़ाने दे लेकिन वो अपना कंपैशन कभी छोड़ते नहीं है। तो खुद उनके पीछे लगेंगे या किसी को उनके पीछे लगाएंगे लेकिन वो अपना कंपैशन कभी छोड़ते नहीं है, क्योंकि जीवात्मा यहाँ पर है अपने पैशन के अनुसार है। अगर पैशन नहीं बढ़ाते, अगर सत्वगुण में आ जाता है तो जल्दी ही भगवान के पास जा सकता है। तो वैसे ये सुहृद जो मित्र है हमारे कृष्ण है तो हमेशा सकारात्मक मदद करते हैं, कभी निगेटिव नहीं सोचते हैं। अगर जीव एक सेकंड के लिए, एक फ्रैक्शन के लिए अगर सोचता है कि भगवान मुझे आना है आपके पास, तो भगवान तुरंत अरेंजमेंट करते हैं, वो रुकते नहीं है, किधर भी हो तुरंत खुद आ जाएंगे या फिर किसी और को भेजेंगे। जैसे हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष में अगर देखते हैं, हालांकि उनको पता भी नहीं था कौन भगवान है, बोले जो भी भगवान है ये ले लो, तो भगवान वहां पर आए और इतने फास्ट आए कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इतना फास्ट कैसे आए, कौन से फ्लाइट से आए, तो उनका गरुड़ से वे उधर वहां पर पहुंच गए। अगर खुद भगवान हालांकि आ ही जाते हैं लेकिन अगर कभी कभी कुछ सिचुएशन में खुद नहीं आ पाते तो अपने भक्तों को भेजते हैं और उनको अरेंज करते हैं। तो बहुत रेयरली जीवा जो है भगवान को ढूंढता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, मैक्सिमम जो है भगवान अपने भक्तों को भेजकर उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के लाते हैं। जैसे ना यहाँ पर जितने बहुत सारे भक्त हैं वो मैक्सिमम जो है वॉइस पिचिंग से आए हैं, तब जब हम हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, हमने कभी सोचा था कि आजू बाजू मंदिर ढूंढेंगे, वाई सेंटर, बेस, बीएसएल जो भी था, तो हम वहाँ पे ढूंढने कभी ढूंढते नहीं हैं। लेकिन जो सीनियर है हमारे या फिर जो भक्त है, वे हॉस्टल ढूंढ के आ जाते हैं। जैसे राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव भगवान की जय, गौर निताय की जय। तो हॉस्टल में ये भक्त आते हैं, देखिए वो ज्वाइन नहीं करते हैं, बाल बढ़ाते हैं, पैंट शर्ट में आते हैं, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर वो प्रोग्राम को लेके आते हैं। हमें याद है जब हम थे हॉस्टल में, तो कुछ भक्त एक स्कूटर पे चार चार पांच पांच लोगों को लेके आते थे, तो वो सब सोचिए कंपैशन मतलब कितना है। और जो सुमो था, हमें याद है अभी भी, वहाँ से हम ना प्रेरणा होता था तो वहाँ पर जाते थे मंदिर में, तो सुमो में हम बोल नहीं सकते कितने लोग बैठते थे, 15-20 जितने सब कुछ हो एक ही सुमो में बैठ जाते थे और प्रोग्राम के लिए जाते थे। तो वो दिन अगर याद आता है तो देखते, अगर भक्त नहीं आते तो हम पता नहीं कहाँ घूमते रहते। तो ऐसे भक्त जो अपना कंपैशन दिखा रहे थे और इसके कारण हम आए हैं, अन्यथा पता नहीं, हम तो कभी भगवान क्या है वो भी पता नहीं रहता था। तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए भक्तों का। वो ऐसा कहा जाता है कि 20 गैलन खून बहाते हैं एक व्यक्ति को, एक जीवात्मा को भगवान के पास लाने के लिए। तो जैसे प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं, अगर हम अपना चमड़ा निकाल कर उनके जूते पहनाएंगे तो भी हम उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। तो वही जो भावना है वो हमारे अंदर होना चाहिए कि जो भक्त है हमारे लिए इतना कुछ किए हैं, तो हम भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद, आने के बाद जब साथ में रहने लगते हैं तो भूल जाते हैं। तो लेकिन ऐसा भाव रखेंगे तो भगवान भी हमको भूल जाएंगे। तो अगर हम भक्तों के प्रति ग्रेटफुल रहेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनते रहेंगी। अगर हम भूल जाएंगे तो भगवान अपना कृपा ले लेंगे, तब फिर हम डगमगा जाएंगे इस भौतिक जगत पर। अगर देखिए, अगर सहारा ही नहीं रहा, अगर कोई घर में रह रहा है, क्षति नहीं है, तो उसके लिए क्या है ना, धूप आएगी, बरसात आएगी, ठंडी लगेगी। तो वैसे ही जब अगर हम सहारा लेते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। जब हम गुरु का सहारा लेते हैं, भक्तों का शेल्टर लेते हैं, तो भगवान भी अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। देखिए, इस भौतिक जगत में हम देखते कि छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन हमने अभी ऐसा कभी देखा नहीं, बहुत रेयरली, या फिर हमने अभी तक ऐसा देखा नहीं कि बड़ा व्यक्ति छोटे के पास जाता है। लेकिन अब देखेंगे भगवान कृष्ण के बारे में, तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन वे छोटे से छोटे जीवात्मा का ख्याल रखते हैं, सोचते हैं, उनके पास आते हैं। अगर हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो पूरे, हम देखते कि भारत भ्रमण किए और हर एक जगह पर जाके उनको बता रहे थे कि हरिनाम लो और वापिस भगवत धाम चलो। तो यही हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान जो है हर एक जीवात के बारे में सोचता है। हालांकि बहुत बड़ी लीला है, लेकिन उसे कट शॉर्ट करके बताने का प्रयास करेंगे। तो ये रुक्मिणी सवेवर का है, तो रुक्मिणी सवेवर अगर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो समय तो बहुत ही कम है, लेकिन देखेंगे उसी इसमें हम फिट करने का प्रयास करेंगे। तो जो नारद मुनि है या भक्त है, साधु संत है, जो अलग अलग जगह जाकर, जैसे है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे भक्त आते हैं, तो वैसे ये परंपरा में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि परंपरा हम देखते हैं नारद मुनि की परंपरा है, वो घूमते रहते हैं, देखते हैं कोई जीवात्मा है बेचारा दुखी है तो तुरंत उसे भगवान के पास या भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसे ही जो नारद मुनि है, कौंडिन्यपुर में जाते थे जहाँ पर रुक्मिणी माता विराजमान थी, तो वहाँ जाने के बाद जब साधु जाते हैं तो कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर भी वही कर रहे थे नारद मुनि। और जब कृष्ण के बारे में सुनी रुक्मिणी माता तो वो आकर्षित हो गई। जनरली हम देखते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा ही नहीं, फिर भी वो अपना हृदय जो है कृष्ण को दे बैठी। तो ये साधु संत जब आते हैं तो ये भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो आजकल के संत संगणक तज्ञ है, संत संगणक तज्ञ, तो लोग उनको फॉलो करते हैं, जो भी वो बनाते हैं और वो लेते हैं उसको फॉलो करते हैं और फॉलो डाउन हो जाता है। तो ये ऐसा, ये आजकल के संत है तो हमें निगेटिवली वो प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो रियल साधु संत है वे हमें पॉजिटिवली हमें प्रेरणा देते हैं और भगवान के पास या भगवान से जुड़ने के लिए मौका देते हैं। तभी ये सब हो रहा था, जो रुक्मिणी माता उनसे आकर्षित हो गई। लेकिन जो उन भीष्मक है, उनकी जो इच्छा थी और बाकी लोगों की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन उनका जो भाई, तो उनका इच्छा था कि उनके दोस्त के साथ हो जो था शिशुपाल। तो लेकिन अब ये सब हो गया, फिक्स हो गया, शादी के कार्ड भी बांट दिए हैं और सब कुछ अभी होने ही वाला है, कुछ दिन बचे हैं। तो रुक्मिणी माता को टेंशन आता है कि अभी बोले कैसे मैं कृष्ण को ये बताऊं। तब रुक्मिणी माता जो है निर्लज्ज होकर लव लेटर लिखती है और एक ब्राह्मण के पास देती है और बोलती कि ये कृष्ण को दे दो। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, कुनी वंदा कुनी निंदा, जप करने माजा धंधा। तो भक्ति में अगर निर्लज्ज नहीं हुए हम तो भक्ति ठीक से कर नहीं पाएंगे। मतलब तुकाराम महाराज बोल रहे हैं, कोई मुझे ग्लोरीफाई करो या कोई मेरी निंदा करो, लेकिन मेरा बिजनेस है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भक्ति करने के लिए, नाम जप करने के लिए हमें लज्जा नहीं रखना चाहिए। जब हम लोक लज्जा रखेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है खुलकर किसी को प्रपोज करना, आजकल के भाषा में उसे डेरिंग कहते हैं या बोल्डनेस कहते हैं। तो लेकिन ये उस समय नहीं था, उस समय एक लोक लज्जा के कारण कोई स्त्री जो है वो बोलती नहीं थी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि रुक्मिणी माता ने ये लव लेटर कृष्ण को भेजा। हालांकि रुक्मिणी माता जो है वो नित्य सहचरणी है भगवान की और वो हमेशा भगवान के बारे में सोचती है और उनका जो मन है भगवान के चरणों पर है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है ब्राह्मण का स्वागत करते, क्योंकि ब्राह्मण जो लेटर आके पहुंच गया है। कृष्ण जो यथारूप जो मतलब जो चाहिए ब्राह्मण का स्वागत के लिए वो सब करते हैं और फिर पूछते कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ब्राह्मण बोलते कि मैं ऐसा ऐसा लेटर लेके आया हूं। तो कृष्ण बोलते कि मुझे दो ऐसा नहीं बोले, बोले आप पढ़ो। तो उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं और पढ़ते हैं, जब सुनते हैं सब उसमें लिखा जाता है कि रुक्मिणी माता बोलती कि मैं निर्लज्जवश आपको बुला रही हूँ और आप मुझे यहाँ आकर ले जाइए। तो ये जब सुनते हैं तो कृष्णा बोलते हैं कि मैं भी उसके बारे में सोच रहा हूँ, रात दिन नींद नहीं आ रही है सोचकर। ये ब्राह्मण थोड़ा चकित हो गया, बोले इनको तो पता नहीं है पहली बार लेटर लेके आया हूँ कि इसके पहले किसी ने लाया क्या, ऐसा लग रहा तो पहली बार ही लाया हूँ। तो भगवान ऐसे कैसे बोल रहे कि मैं भी दिन रात उसके बारे में सोच रहा हूँ, नींद भी नहीं आ रही मुझे। तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण जो है हर जीव के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण ने पहले कभी देखा था, कभी कुंडनीपुर बीच में कभी इधर उधर जाते समय कुंडनीपुर गए और मिल के आए, ऐसा भी नहीं था। या कभी फोटो आ गया उनका, ऐसा भी नहीं था। ना सुने थे ना देखे थे, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे ये लेसन ये है कि हर जीव के बारे में भगवान सोचते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं एक जगह पर, तो रासलीला जो है वो कृष्ण के लिए सबसे ऊंचा आनंद प्राप्त करने का लीला है और हमें वो सुन के ही आनंद प्राप्त करना है और वो ऊंचा आनंद होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कृष्ण और गोपियाँ जो है अपने आप को भूल गए हैं और इस प्रेममय आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। इतना प्रेम का क्षण है, इतना प्रेम जो है मिल रहा है वहाँ पर, इतना आनंद यहाँ पर मिल रहा है। गोपियाँ देख रही हैं कृष्ण के आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो गोपियों को लगा कि हम उनके साथ हैं इसलिए आनंद के आंसू आ रहे हैं। तो गोपियाँ खुश हो गई कि भगवान को हम कुछ आनंद दे रहे हैं। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बोलते हैं कि लेकिन कृष्ण जो है वे उनके बारे में नहीं सोच रहे थे। कृष्ण जीवात्मा है उनके बारे में सोच रहे हैं, जो उनको छोड़ के गए हैं भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं अगर वो जीवात्मा यहाँ पर होते वो भी अभी सुख प्राप्त कर रहे होते, आनंद प्राप्त कर रहे होते। तो ये सोचकर उनके आंखों में अश्रु आ रहे थे। तो इसलिए हम यहाँ से पता चलता है कैसे भगवान जो है हमेशा जो जीवात्मा छोड़ के गए हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो विरह भाव बोलते हैं हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम भी हमारे जीवन में देखते जो हमारे साथ रहता है इतना हम ध्यान नहीं रखते उनका, लेकिन जब जाने के बाद याद आता है, जैसे हम 12th तक माता पिता के साथ रहते हैं, जब हम ना कॉलेज के लिए आ जाते हैं घर छोड़कर, तो हम डेली याद करते हैं, मेस में जाने के बाद तो याद ही करते हैं माँ के हाथ का खाना हाँ, लेकिन अगर हम वॉइस में आ जाते तो फिर नो प्रॉब्लम, वो कंपेंसेट हो जाता है। तो भगवान जो है हर भक्त के लिए अरेंजमेंट करते हैं, खुद आते हैं, स्पेशली खुद ही आ जाते हैं, छोटा भी कारण हो लेकिन भक्त बुलाते तो आ जाते, इसलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सल। तो एक बार अकबर जो है बीरबल को पूछते हैं, अरे बीरबल हमने सुना है कि आपके भगवान जो है वो भक्तों की रक्षा के लिए खुद आ जाते हैं। तो बोलते क्या जरूरत है, इतने बड़े भगवान हैं तो उनके बहुत सारे सैनिक भी रहेंगे, सेनापति भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, तो उनको क्यों नहीं भेजते। अकबर अपना सोच रहा है क्योंकि वो भी है ना बादशाह था, उनके भी सेनापति थे, सैनिक थे। तो बीरबल बोलते हैं हाँ मैं समय आने पर बताऊंगा। तो फिर कुछ दिन हो जाते हैं, तो अकबर अपने बेगम के साथ नौका विहार के लिए गए थे, और उनके साथ बच्चे भी थे, उनके छोटे बच्चे थे, बड़े नहीं थे छोटे थे, और एक नौका में बेगम, बीरबल और अकबर, और उनका एक छोटा सा बच्चा वो थे, और आजू बाजू के नौका में उनके सैनिक थे, और वो नौका विहार कर रहे हैं। और कुछ देर बाद मतलब जो नौका जो है जो नदी के बीचों बीच गई, तब बीरबल क्या करते हैं वो बच्चे को धक्का मार देते हैं, और वो बच्चा जो है वो नदी में गिर जाता है, और जैसे गिर जाता है तो अकबर जो है तुरंत जंप मारता है और उस बच्चे को निकाल कर ऊपर लाता है, और चिल्लाने लगता है बीरबल पागल हो गए क्या, कितना छोटा बच्चा है, मुझे तैरना आता है क्या, नहीं आता, अगर वो गया होता तो बीरबल बोले आप थे ना, आप किस लिए हैं। तो बोले क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या बताना है। बोले कुछ दिनों पहले आपने एक सवाल पूछा था कि भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान क्यों आते हैं। तो बीरबल बोल रहे देखो आपके पास इतने सारे सेनापति हैं, इतने ना सैनिक हैं, आपने उनको ऑर्डर क्यों नहीं दिया। बोले ये मेरा बच्चा है तो मैं ही जाऊंगा बचाने के लिए। तो वैसे भगवान भी बोलते हैं कि जीवात्मा जो है मेरे हैं, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए खुद आता हूं। तो ये ऐसे क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, इसलिए जब भी भक्त को जरूरत होती है भगवान की तो भगवान तुरंत वहां पर आ जाते हैं, इंस्टेंट सर्विस होता है वो। तो भगवान लेट नहीं करते हैं कभी, भगवान राह देखते कब बुलाएंगे, लेकिन हम ही बुलाते नहीं है इसलिए भगवान आते नहीं है। कृष्ण यहाँ पर बता रहे कि मैं रुक्मिणी के बारे में सोच रहा हूं कि कैसे उन्हें मैं अभी जाके प्राप्त करूं। तो कृष्ण ने भी यहां पर किसी को भेजा नहीं, जैसे अकबर ने अपने सेनापति या किसी मंत्री को नहीं भेजा, वैसे कृष्ण ने यहां पर उनके मंत्री को, सेनापति को, किसी सैन्य को भेजा नहीं, और खुद उठे और बोले कि चलो मेरा रथ तैयार करो, अभी के अभी हम जाएंगे। तो ब्राह्मण के बोलते बैठो हम अभी जाएंगे, और रातों रात कई बार उन्होंने मुकाम नहीं किया, कुछ रेस्ट नहीं लिया, और रातों रात ट्रैवलिंग करके वो कौंडिन्यपुर पहुंच गए। तो वैसे देखिए जो जीव जो है अलग अलग योनि में यात्रा करता है, दुख भोगता है, हालांकि जेल में ही है, मे बी कंफर्टेबल, जो कंफर्ट लेवल है अलग अलग होगा। जैसे कोई एकदम चिंदी चोर है उसको बहुत पिटाई करते हैं, एकदम लो जेल में डालते हैं, लेकिन जो बड़ा चोर है करोड़ों में घोटाला करता है उसको अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है कि उसका कर्म अच्छा है, लेकिन हालांकि जेल ही है। तो ये जेल में लोग घूमते रहते हैं, छोटे जेल से बड़े जेल, बड़े जेल से और ऊपरी वाला जेल। तो ये भगवान जो है ये देख रहे हैं कि कैसे ये इनको इस जेल से बाहर निकालना है, घूमने नहीं देना है। तो वैसे यहाँ पर रुक्मिणी माता का वो चिंता कर रहे हैं, और रुक्मिणी माता उधर चिंता कर रही है कि पता नहीं जेटर पहुंचा कि नहीं, पता नहीं पहुंचने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा, कितनी निर्लज्ज लड़की है, डायरेक्ट प्रपोज कर रही है, या फिर पता नहीं उन्होंने अगर मेरा लेटर पसंद नहीं आया तो उसको रिजेक्ट तो नहीं किया होगा। तो ऐसी रुक्मिणी माता जो है चिंता कर रही है, और आगे बोल रही कि मेरा पुण्य तो कम नहीं पड़ा, जो मैंने पुण्य कर्म किए हैं वो तो कम तो नहीं हुआ, या फिर मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई लिखने में। तो रुक्मिणी माता जो है उनको दोष नहीं दे रही थी, अपने आप को दोष दे रही थी कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई। तो वैसे भक्त को भी अपने आप को कोसना चाहिए, क्यों मुझे भगवान नहीं प्राप्त हो रहे, क्यों मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या मैं किसके प्रति अपराध किया हूं, या मेरी साधना ठीक नहीं हो रही है, या मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें खुद अपने अंदर झांक के देखना है तो उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में जो रुक्मिणी माता है उनकी राइट आग जो है फड़फड़ाने लगी। वैसा कहा जाए जो राइट साइड अगर फड़फड़ाता है तो शुभ लक्षण, कुछ तो शुभ संकेत मिलता है, कुछ शुभ होने वाला है, और अगर लेफ्ट होता है तो कुछ तो गलत होने वाला है, ऐसा पता चलता है। तो भौतिक जगत में भी हम फड़फड़ा रहे हैं, किसके कारण? प्रेम के कारण नहीं। यहाँ पर जो रुक्मिणी माता है वो प्रेम के कारण या शुभ संकेत उन्हें मिल रहा है, तो लेकिन हम इस भौतिक जगत में फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं दुख के कारण। तो ये जितना हम रियलाइज करेंगे हम फड़फड़ा रहे हैं यहाँ पर, उतना हम कृष्ण के नजदीक जाएंगे। तो कृष्ण वही देख रहेगी कब हम उनका शरण लेते हैं, और कृष्ण रेडी है शरण देने के लिए, लेकिन हम शरण नहीं ले रहे हैं। तो कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और ऑर्डर लेटर में लिखा था कि ये समय में मैं ये मंदिर में रहूंगी, उसके बाद फिर आप मुझे अपना बना सकते हैं। और जैसे ही जब ये शरणागति का लेटर मिल जाता है तो भगवान पूरा जिम्मेदारी ले लेते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, रुक्मिणी माता को ले लेते हैं, और पूरे जो खतरनाक परिस्थिति था, कठिन परिस्थिति थी, वहां पर सभी सैनिकों ने हमला कर दिया, सभी योद्धा आ गए, लेकिन कृष्ण ने सबको परास्त किया और रुक्मिणी माता की रक्षा कर उन्हें अपने घर वापस लेके आए हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जब हम भगवान को शरण जाते हैं तब कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों भगवान उसको संभाल लेते हैं और हमें अपनाते हैं और इस भवसागर से हमें बाहर निकालते हैं। ओके, यहाँ पर समय हो गया है। तो ये शेल्टर लेने का जो अच्छा तरीका है, तो भगवान का हरिनाम लेकर, अभी जो हरिनाम पंद्रवड़ा चल रहा है उसमें हम अच्छी तरह शेल्टर ले सकते हैं। तो ये बोलकर मैं यहाँ पर जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है वो यहाँ पर विराम देता हूँ। श्रीमद्भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।